बहुत सुंदर भजन और वे भक्ति साहित्य आपके समक्ष प्रसिद्ध संगीतकार उपस्थित किए हुए हैं। हमारे प्रिय और बड़े प्यार से कहूँ हमारे पुत्र के समान शिष्य भरूच नगर पालिका के प्रमुख जितेंद्र भट्ट आए, तो मैं अपने बेटे से कहता हूँ जितेंद्र भट्ट आप आइए और संगीत का स्वागत आपके द्वारा हो।
वंदे जगत गुरुम। उपस्थित प्रिय आत्मन, आज आसिफ ने विषय बड़ा सुंदर दिया है और उसे मैं आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों स्वरूप दूंगा। उन्होंने कहा स्वामी जी हम शेयर करते हैं, कुछ लोग डिवीजन करते हैं, शेयरिंग एंड डिवीजन की बात। तो मैं भी, वो भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े, मैं भी पढ़ा हूँ, तो अब देखिए छोटा फोटा अनुवाद कर रहा हूँ और आप लोग विद्वान हैं तो मुझे भी क्षमा करना, और अगर अनुवाद में थोड़ी कुछ समझ बराबर न हो तो आसिफ और मुझे दोनों को क्षमा करना। तो वो भी इंग्लिश मीडियम वाले, हम भी इंग्लिश मीडियम वाले। अब हमने जो विचार किया इसका भागीदार और भागाकार, जिंदगी में दो तरह के मनुष्य हैं, एक आपके दुख में भागीदार बन करके दुख कम करते हैं और एक है सुख का भागाकार कर देते हैं, जो सुख है उसको डिवीजन में डाल देते हैं। अब इसी पर बताऊंगा, अगर आप वेदांत उठाकर देखें तो वेदांत में आया है एकम सत विपदा बहुधा भजन। सत एक है, अस्तित्व एक है, और जो एक है उसका सृजन शून्य में से है। आकाश का रंग आपको दिखाई पड़ रहा है, आप कहते नीला रंग है, यहां पूरा पठित समाज बैठा है, आपका विज्ञान भी हमारे समर्थन में है। जो शून्य है उसका रंग नीला है, वास्तव में नीला है नहीं लेकिन शून्य का रंग नीला जैसा दिखाई। गहरा पानी हो, आप देखेंगे वो भी नीला दिखाई पड़ता है लेकिन वास्तव में नीला नहीं है। अब हमारे भगवान के, कृष्ण का, राम का, विष्णु का जो स्वरूप नीला दिखाई पड़ता है तो पहले वैज्ञानिक नहीं मानते थे, अब यही मानते हैं ये शून्य है और तुम्हें जिस तरह सर्जन करना चाहो ये तुम्हारा संकल्प है लेकिन वास्तव में वो शून्य है और शून्य का रंग नीला है, इसलिए भगवान का रंग आपको नीला दिखाई पड़ता है लेकिन उनका अपना कोई संकल्प नहीं है, आपके संकल्प में मदद करो। एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने मेरे से पूछा और उनका स्वामी जी बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला लंकेश शक्ति प्राप्त करके गलत रास्ते चला। तो स्वामी जी शंकर को नहीं मालूम था कि शक्ति का क्या करेगा। मैंने कहा शंकर एक शक्ति है और पूछने वाला क्लास वन ऑफिसर था, पढ़ा लिखा था, थोड़ा आस्तिक था, थोड़ा नास्तिक था, थोड़ा इंसान भी था, थोड़ा शैतान भी था, थोड़ा नेक था, थोड़ा बेईमान, बड़े प्यासे, इसलिए पूरे आस्तिक भी नहीं थे, पूरे नास्तिक, और आधा आदमी बड़ा खतरनाक होते। तो मैंने कहा बताइए आप क्लास वन ऑफिसर कैसे बने, आज ये किया ये किया। अब क्लासरूम ऑफिसर बनने के बाद सरकार नहीं पूछती कि शाम को मंदिर में जाते हो कि मंदिरालय में जाते हो, आपको महीने की पगार कितनी मिलती है, तो कहे लगभग 25,000। तो मैंने कहा ये 7-8 साल पहले की बात, कहते 25,000। तो मैंने कहा सरकार जब पगार देती है तो नहीं कहती कि शराब पीना कि क्या करना। एक ऐसी साधना है जिससे शक्ति प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त करके आप उस शक्ति का उपयोग और दुरुपयोग आपके ऊपर है, देने वाले पर। एक मामूली बात, सब्जी एप्पल या फल काटने के लिए आपने मुझे चाकू दिया, तो चाकू से मैं सब्जी भी कबचम भी केरी जो कुछ भी है उसका उपयोग करके मैं प्रसाद बना सकता हूँ, और क्रोध में आकर के मैं अपनी या किसी की उंगली भी, अब देने वाले को पाप नहीं लगे कि भाई आपने चाकू दिया इसलिए उंगली कटी, ये आपके ऊपर है। इसलिए कर्म का जो सिद्धांत है वो आपके ऊपर है। तो बड़ी अच्छी बात किया उन्होंने दिया कि भाई हमें एक दूसरे को शेयर करना है, पूरक बनना है और दुख में भागीदार बनना है। कैसे बनना है आप देख लीजिए, यहां पर प्यारे बच्चे बैठे, पहले उनको बता दो जो शून्य है उसी में से सृजन होता है। और मेरे प्रिय आत्मन आज पूरा विज्ञान कहता है, बड़े प्यार से कहूं, एक का आधा होता है, दो का आधा होता है, तीन का आधा होता है, चार का आधा होता है, आप गिनते जाइए, एक से लेकर करोड़ों तक जाइए उसका आधा होगा, लेकिन शून्य का आधा नहीं होता, चाहे बड़ा बनाओ छोटा बनाओ लेकिन शून्य। इसलिए जो आपका अस्तित्व है, चाहे आप एक महीने के थे कि आप 100 बरस के हो गए, जो आपका अस्तित्व है वो जो शून्य है वो छोटा बड़ा, और शून्य का मतलब जाति पांति से भी आप रोज शून्य बनते हैं। जब आप सो गए तो आप शून्य हो गए, हम सब एक हो गए। लेकिन जो विषय दिया है उस पर मैं थोड़ा आपसे विचार करूं। जब हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम स्वप्न देखते हो, सपने में देखा कि मैं पड़ोसी का आदर कर रहा हूं, या सपने में मैं पड़ोसी का अनादर कर रहा हूं, सपने में मैंने देखा कि मैं अपने पड़ोसी का आदर कर रहा हूं, और देखा इस सपने में मैं अपने पड़ोसी का अनादर कर रहा हूं, लेकिन जगने पर वहां कौन था, कौन पड़ोसी था, आप ही अपना आदर कर रहे थे, आप ही अपना। आज मैं सपना देखूं, जैसे इस समय जागृत में देख रहा हूं, सपने में देखूं भाई प्रमुख आए हैं, कांतिलाल जी आए हैं, टीडीओ आए हैं, जीडीओ आए हैं, प्रोफेसर आए हैं, डॉक्टर आए, इंजीनियर आए, और मैं फोन करूं सुबह उठ के कि आप लोग मेरे सपने में आए थे, तो आप कहोगे स्वामी जी मैं तो सपने में इंग्लैंड गया था, मैं कहाँ पे भाई, आप मेरे सपने में आए और आपके सपने में इंग्लैंड आए, तो मेरे सपने में जो आया कौन था, वो मैं ही था, कोई दूसरा। इसलिए अगर विचार करके देखिए तो जब हम एक दूसरे को अपना स्वरूप मान लेंगे तो दूसरे का दुख ही बांटेंगे, दुख का गुणाकार नहीं करेंगे, दुख बढ़ाएंगे उसका भागी का। लेकिन जब हम दूसरा मानेंगे, फिलॉसफी क्या कहती है, व्हेन यू फील अदरनेस देन देयर इज डिविजन, इंग्लिश मीडियम वाले समझिए, व्हेन यू फील अदरनेस then there is division, and when you feel oneness, there is no division, there is only vision, not division. वहाँ विजन है, वहाँ कोई डिविजन नहीं, जब वननेस हो। और हम हैं वन, जा विचार करो, बड़े प्यार से कह रहा हूं, हमारा आपका शरीर पुत्र या पुत्री व्यवहारिक बात है, आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी संप्रदाय में हैं, लेकिन जो पंच महाभूत की बात आई, पुत्र है कि पुत्री है, कोई भी है, यहां व्यवहार मतलब है। सबका शरीर ये जो पिंड है, पुत्र या पुत्री के रूप में, गुरु या शिष्य के रूप में, ये आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी है। बताइए आकाश की क्या जाति है, वायु की क्या, अग्नि की क्या है, जल और पृथ्वी क्या है? जिन पंच महाभूतों से आपका शरीर का निर्माण हुआ, उस एनर्जी में, उस भूत में, उस हिस्सेदारी में कहीं कोई जाति पांति नहीं। जाति पांति का गौरव है, संकीर्ण विचार नहीं, एक गौरव है हम भारतवासी हैं, एक गौरव है कि हम गुजरात के हैं, एक गौरव है कि हमारे माता पिता पढ़े लिखे, एक गौरव की बात है, संकीर्णता की बात नहीं। लेकिन गौरव में जब अहम आ जाता है तो आदमी संकीर्ण बन जाता है। गौरव में जब अहम आएगा तो क्या होगा, हम हिरण्यकश्यप बन जाएंगे, रावण बन जाएंगे, बस मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राम में जब शक्ति प्राप्त हुई तो सेवा में लगे, धनुष तोड़ते हैं, लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, फिर भी पूछने पर कहते हैं गुरु की कृपा से शिव धनुष टूटा, ये बानर भालू सब साथ में, तब मैं विजय प्राप्त किया, लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने विजय प्राप्त। या विचार कीजिए कितने शून्य हो गए, या विचार कृष्ण की भी यही बात है, कृष्ण अगर शून्य नहीं होते तो अपने चेले के हाथ जूठी पतले नहीं उठाते यज्ञ में। आराध्य यज्ञ हुआ, वहां एक दूसरे बातें हो रही कि पत्तल कौन उठाएगा, कृष्ण सुने कहते तो घर की बात है, अपनी बात है, मेरा स्वरूप है। स्वयं यज्ञ में हमारे भगवान के शून्य है, कोई हम नहीं है, तो पतले भी उठाए, और हम आप स्टेशन पर खड़े रहते हैं और कुली कुली बोलते बोलते थक जाते हैं, लेकिन जब तक कोई आएगा नहीं तब तक 2 किलो के सामान उठाने में, उसे ईश्वरचंद विद्यासागर याद आते हैं। खास करके अपने नौविकों से, बच्चों से कहूँगा, ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक ऐड दिया, विज्ञापन दिया कि कुछ समाज सेवकों की जरूरत है, मुझसे मिले। एक आदमी आया, ये तो कहानी है, सब जानते हैं, ईश्वरचंद विद्यासागर, केवल मैं आपको बता रहा हूँ। खुली खुली वो व्यक्ति बोलता है, कोई नहीं मिला। रोज सुबह वो हावड़ा स्टेशन पर घूमने जाया करते थे, कलकत्ते के थे, आज 2 जिला हो गया है, कलकत्ता अलग, हावड़ा अलग, ये सब अलग हो गए, पहले एक ही। स्टेशन पर रोज सुबह ईश्वर विद्यासागर घूमने जाते थे, वो खुली खुली बोलता है, बहुत सादे ढंग से रहते थे ईश्वरचंद विद्यासागर। और मेरे प्यारे बच्चों, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात सुनो, बहुत गरीब घर के थे, पढ़ने के लिए घर में कोई साधन नहीं था, उस समय दीपक था, बिजली वगैरह भी नहीं थी, दीपक में प्रज्वलित करने के लिए तेल के भी पैसे नहीं थे, ये पूरी कहानी दुनिया जानती, केवल मैं नहीं जानता, लेकिन आप इशारा कर। अपने पड़ोसी से कहा कि मैं आपके दीपक के पास नहीं आऊंगा, आपको परेशान नहीं करूंगा, लेकिन आप इजाजत दीजिए कि जहां आप दीपक रखते हैं, मैं अपनी दीवार से वहां तक रास्ता सुराग बना करके प्रकाश आएगा। एक एक दो दो अक्षर आपके दीपक की मदद से पढ़ करके मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन दीपक सारी रात आपका जलता रहे, आपको मैं परेशान नहीं। ईश्वर चंद विद्यासागर ने दीवार में जगह बनाई और ऐसे देखते रहे। पड़ोसी अच्छा था, दीपक पहले बुझा देता था 11 बजे, लेकिन सारी रात जलता और एक एक अक्षर करके ईश्वर चंद विद्यासागर आप क्यों नहीं बन सकते। बहुत बड़े आदमी बने, बहुत बड़े वहां के पूरा विश्व उनको जानता है। खुली खुली बोला गया ईश्वर चंद विद्यासागर, कहिए कहाँ जाना। कहा मुझे ईश्वर चंद विद्यासागर के बंगले पे जाना। कहा मुझे उधर जाना, चलिए मैं लेता हूँ। उठाए ले गए, कहे कितना पैसा दो। कहा पैसा बाद में देना, इस घर में मैं आता जाता हूँ, पहले उनसे कह तो दूँ कि भाई कोई अच्छे आदमी मिलने के लिए आए। उन्होंने उस समय तो काफी बहुत बड़े हो गए, नौकर चाकर थे। ईश्वर चंद विद्यासागर अपने चैम्बर में बैठे, कुर्सी पर बैठे और नौकर से कहा कोई भाई है उनको अंदर ला, अंदर लाए तो चकित हो गए। कहते आप का आप किस लिए आए, एडवर्टाइज दिखा। कहते हैं कि जो खुद अपनी सेवा नहीं कर सकता वो समाज की सेवा क्या करेगा। अब लीजिए एक गिलास शरबत पीजिए और जाने का टिकट दे देता हूँ वहां। आप अपनी सेवा नहीं कर सकते तो समाज की सेवा क्या करें। जा बिता विवेकानंद भी कर, जो अपने कमरे की सफाई नहीं कर सकता वो समाज में आकर समाज सेवक बनकर के समाज की सफाई क्या करे। हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं कि जो स्वयं नहीं उठ सकता दूसरे को कैसे उठाए, जो दूसरे को चाहते हो आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों को मैं अपनी जीवनी बहुत कम बताता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ अच्छे अच्छे घर के बच्चे भी हैं सभी तरह। थोड़ी सी मैं अपनी बात करूँ कि माता पिता क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, क्या ये हमारी संस्कृति के बात गा रहे थे, देश प्रेम के बात कितने सुंदर। उस समय मेरे पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल थे, फुल कर्नल नहीं थे, मैं 14-15 साल का था। अब पूरी बात नहीं बताता, मैं अपनी जगह ठीक था लेकिन मेरे कारण मेरे माता पिता में थोड़ी सी बोलते हार्ट स्कैन हो गया गर्मा गर्म मेरे कारण। मैं माँ को पिता को भी बहुत मानता, आज तक मानता हूँ माँ के, लेकिन बहुत ज्यादा माँ को मानता हूँ। तो मेरे कारण मेरी माँ को थोड़ा आंसू आ गया। उसी समय नौकर जो था अर्दली बोलते थे लाया कुछ पर उठा के फेंक, पिताजी कुछ नहीं बोले। फिर मेरे कमरे में आए, नहीं तो पहले हमें बुलाते थे जस्कार गिरने का ये बस कम तो भाई। और उस दिन मेरे कमरे में आए, मैं समझ गया कहीं साथ में बेटे थोड़ी गलती हुई हो। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात, आप माँ को क्यों डांटते, गलती मेरी थी, मुझे डांटते कहे कुछ बोले। लेकिन जो उन्होंने प्यारे बच्चों ने बात की वो मैं आपसे करना चाहूँगा। उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल थे, कहते बेटा अगर ये सारी सुविधाएं यहाँ होती, नौकर है, चाकर है, बंगला है, फर्स्ट क्लास है, गाड़ी है, ये है, तुम्हें अच्छा खिलाता हूँ, तुम्हारे लिए नौकर है, अच्छा जूता पहनाता हूँ, कपड़े देता हूँ, अगर इतनी सुविधाएं यहाँ होती तो तुम लोगों को छोड़ करके मिलिट्री में जाकर जंगल जंगल क्यों भटक, तुम मेरे से नाराज हो जाओ लेकिन एक भोजन से नाश्ता क्यों न। फिर एक चीज कहा बेटा, एक बार रंगून के जंगलों में फंस गया था बेटे, मुझे उस समय डिस्टिंग्विश्ड सर्विस आर्डर का मिलता जो आजकल परम वीर चक्र है, तो मेरे पिता के नाम है कर्नल कृष्ण प्रताप सिंह और पुराने सब लेते वाले जानते थे कि उस समय उनको जो आज का पद्म श्री उनको मिला था डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल कृष्ण प्रताप सिंह। कहते मेरे को मिला बेटे कैसे हुआ तुम तुम्हें मालूम है, मैं जंगल में 3 दिन तक सामना दुश्मनों का करता रहा, पानी भी नहीं पीने को मिला और आपसे हाथ जोड़ता हूँ। पिता ने बड़े संकोच से बड़े प्यार से गले लगा कहा बेटा 3 दिन तक मैं अपनी पेशाब पी करके जिंदा तुम्हारे लिए रहा, बाकी जिंदा रहने की भी कोई जरूरत नहीं। मेरे आंखों में आंसू, तुम लोग याद आए नहीं, इस तरह बुरी तरह आजकल की लड़ाई अलग है, उस समय की लड़ाई अलग है। और उसके बाद ही वो कर्नल बने और डिस्टिंग्विश सब उसका मेडल मिला जो आजकल परमवीर होता है, जितने पुराने मिलिट्री वाले सब जानते हैं, इसलिए नाम बार 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 कर्नल किस प्रताप से। लेकिन जो गले लगा के बात थी कि तुम लोग यहाँ आए, तीन दिन तक भोजन तो छोड़ो पानी नहीं मिला, लेकिन अपनी मेरे प्यारे बच्चों भारत के संस्कृति है, आज मैं सन्यासी हूं लेकिन माता पिता कभी दुखी नहीं किया, अपनी संस्कृति में देखा साधु बनने के बाद भी माता पिता जो दुखी किए हैं या तो जेल में चले गए या तो मर्डर हो गया ऊपर चले गए। इसलिए प्यारे बच्चों भारतीय संस्कृति का एक आधार जबरदस्त है, सारी दुनिया एक तरफ लेकिन माता पिता एक तरफ, क्योंकि यही आपके दुख सुख के शेयरिंग करने वाले हैं, भाग लेने वाले हैं, बाकी दुनिया केवल सुख में शेयर करेगी, दुख में कोई शेयर दुख में कोई नहीं। और फिर मनोविज्ञान है, जो अंधेरे में चलते समय नहीं गिरा तो दिन में कैसे गिरेगा, दुख में जिसने साथ दिया है वो सुख में तुम छोड़ते हो वो नहीं छोड़ते, हमारे दुख में मैं बेटा बस हमारे दुख में मुझे माता पिता गुरु ने मदद की, लेकिन आज मैं महामंडलेश्वर बनकर शायद माता पिता गुरु को छोड़ सकता हूं लेकिन वो नहीं छोड़ सकते। जब आप गरीब थे चाय बेचते थे उस समय माता पिता आपको नहीं छोड़े, लेकिन संभव है कि आज आप करोड़पति बन गए तो बाप को पूछते भी नहीं, माँ को पूछते भी नहीं। अब मनोविज्ञान यही कहता है जो दुख में तुम्हें साथ दिया है अपने सुख में उसे न भूलोगे तो कभी दुख आने वाला ही कभी दुख आपके दुख में जिसने भी मदद की वो मित्र हो सकता है, गुरु हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, कोई भी है। दीन बंधु क्यों कहा गया, दीन नाम गरीब का नहीं है, दीन नाम किसका है, मजबूरी का। आपके पास 50 लाख की गाड़ी है, संजोग से आपके ड्राइवर भूल गया, एक व्हील में हवा नहीं ले सका ठीक से, पंप भी गैरेज में रह गया, आप एक विचार से, और हाईवे पर कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, और ड्राइवर कहता है सर व्हील में हवा नहीं गाड़ी आगे नहीं चलेगी, तो आप विचार कीजिए, बड़े प्यार से कह रहा हूं आपकी 50 लाख की गाड़ी हाईवे पर हुई उस समय आप दीन हैं, गरीब नहीं है, हेल्पलेस, और उस समय जो मदद करे वही बंधु है, दीन बंधु है, चाहे कोई भी। सुदामा की मदद किसके, दीन बंधु। कई बार लोग मुझसे कहते हैं महाराज जी ये दीनों का बंधु भगवान है, तो कुछ रोगी फलाने कहते हैं, मैंने कहा भाई सब कुछ रहते हुए जो कहता है आया महाभारत, द्रौपदी पूछती आप देश से क्यों आए, कहा पहले तुझे इनका विश्वास था, इनका विश्वास था, इनका था, फिर अपना था, तू जब दीन बनी तो मैं आ गया। दीन का मतलब गरीब नहीं, कुछ लोग ही नहीं, सब कुछ रहते हुए करूं आपका है, मैं तो केवल इसका ट्रस्टी हूं, मैनेजर हूं, मुझे शक्ति दो कि मैं चलूं। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा हमारे महात्माओं की। आश्रम में गाय थी, गाय मर गई कोई कारण से मर गई, तो लोग कहते महाराज आश्रम में हमने गाय दिया था, पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, ये पाप आपको लगेगा। कहते मुझे क्यों पाप लगेगा, अरे जो इसको घास खिलाता है कहता उसको पाप लगेगा, फिर किसी ने कहा जिसने दिया उसको पाप लगेगा, भगवान सोचते हैं किसका तो निर्णय करना पड़ेगा। आ तो कहानी है, भगवान बालक के रूप में आए, कहा भाई क्या जन, कहा कोई कहता स्वामी जी को पाप लगेगा, कोई कहता सेवा करने लगेगा, कोई कहता है जिसने दान दिया उसको पाप लगेगा, तो बालक कहता है इतनी बात आपकी समझ में नहीं आती, आप लोग बैठो। महाराज जी आश्रम किसका है? महाराज जी अहंकारी थे, मेरा। किसने बनाया? मैंने बनाया। ये आप इतने अच्छे बने तो आपने दान मांगा तक दिया, गाय मैंने कहा था गाय को दान, तो आपने मांगा ना, ये मिली। आश्रम आपने बनाया, गाय आप मांग कर लाए, तो अब इसका पाप भी आपको ही लगेगा क्योंकि आश्रम आपका, गाय आप मांगी। अरे कहते भूल गया, कहते आश्रम मेरा नहीं गाय मेरी नहीं, तो कहा उसका निर्णय वो कर लेगा, लेकिन जब तक मेरा मेरा बोलोगे ये पाप तुम्हारा ही होगा, किसी दूसरे का होने वाला है। जब तक मेरा मेरा बोलोगे पाप है कि, तो पुण्य के लिए तो ठीक है मेरा मेरा, लेकिन पाप के लिए तेरा तेरा, तेरी गलती तेरी गलती तेरी गलती, क्या दुनिया कैसी है। इसलिए भगवान के जो दीन बंधु कहा गया मेरे प्रयास, उसका मतलब यह कि समर्थ रहते हुए सब कुछ रहते हुए जो कहता है प्रभु सब कुछ आपका है, और ऐसा जो हृदय से दीन बनेगा उसके वो बंधु बनेंगे। और देख लीजिए यही सुदामा की बात, किसका हिस्सा सुदामा ने नहीं दिया। सुदामा पेट पे चले गए, दांत बोल रहा, कृष्ण कह रहे आपके दांत तो बोल रहे हैं सुदामा, कहते ठंडी लग रही है। अच्छा एक तो हिस्सा भी नहीं, दूसरा कपट कर रहा आने दो। गुरु जी आए, कहानी आप जानते, मैं भी सारा करूंगा, कपट का क्या फल, दूसरे के हिस्सा दबा लेने क्या फल। गुरु जी कहते हैं भाई सुदामा, गुरु माता ने चने दिया था, किस थोड़ा उदास लगता, दिया कि नहीं दिया, तू अकेला खा गया पकड़े, तब पता चला कि दांत क्यों बोल रहा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट सच्चे न पावा। अक्सर मेरे सामने बड़े प्रश्न उठते हैं, सुदामा मित्र है नहीं, कपट किया हिस्सा नहीं लिया और भीख मांगी। लक्ष्मण दिनदात राम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सबरी की हाँ उन्होंने भी कपट किया। दिनदात चाहे गुरु की सेवा करो, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे माता के पिता की सेवा करो, उसका फल मिलेगा। लेकिन पूर्ण समर्पण के साथ सेवा करने में अगर हमने दूसरे के हिस्सा खा गए या कपट किया, तो याद रखिएगा ये ऐसे कर्म हैं कि चाहे कुछ हो जाए, दूसरे के हिस्सा दबाओगे तो भीख मांगनी पड़ेगी, और दूसरे से कपट करोगे जहां समर्पित हो तो आपको हृदय में चोट बाण लगेगा, मतलब दुखी। ये कपट जब लक्ष्मण को नहीं छोड़ा तो हमें आपको क्यों छोड़े। विष्णु ने कपट किया, साक्षात भगवान ने जालंधर रूप धारणा है, कपट है, और कपट के कारण ही काले पत्थर बन गए। एक बार विष्णु ने कपट करके अब किया तो शालिक राम बने और वृंदा तुलसी बनी, और तुलसी के चरणों में पांव में रह रहे हैं। ये है कर्म सिद्धांत, कितने बड़े बन जाओ लेकिन कपट करोगे तो काले बन करके कहीं न कहीं किसी के पांव में आपको रहना, वो कर्म आपका। उस समय दुनिया थी है और रहेगी, तो सबसे पहले हम एक दूसरे के सुख में भागीदार बनते, हमारे सुख में लोग भागीदार बनते। अगर मैं मनोविज्ञान की बात करूं, आज मेरा शिष्य एक लाख का इनाम प्राप्त करता है, तो गुरु को दे, पिता को दे, माँ को दे, कहीं डोनेशन में दे, स्कूल में दे, हॉस्पिटल दे, कोई नहीं पूछे। मेरा शिष्य एक लाख का इनाम प्राप्त करे, जहां भी देना चाहे दे, हर आदमी उसका हिस्सेदार बने, लेकिन मेरे शिष्य से खून हो जाए और फांसी की सजा हो जाए, तो चेले की जगह न गुरु की फांसी होगी, न बाप की, न बेटे की, न मित्र की, किसी की नहीं होगी, किसकी, चेले। इसलिए हमारा वेद कहता है तुम्हारे शुभ कर्म में सभी हिस्सेदार बनेंगे, अशुभ में कोई हिस्सेदार नहीं बनेगा, तो अशुभ अर्थात कपट करना, छल करना, दूसरे की हिस्सा किसके लिए दबा रहे हो, जबकि कोई हिस्सेदार बनने वाला नहीं है ही नहीं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, मेरी बात छोड़िए, मैं गुरु हूं, हम तो आपको उधार लेते हैं, इसलिए जाए एक बात कर, अभी हमारे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं साइनी और पटेल, पिछली बार डॉक्टर हैंगर ने किया आप लोग सब थे, कहते स्वामी जी बिल्कुल ठीक है, कोई बात ही नहीं, ठीक है। और इन बदन से पूछे एक जबरदस्त ज्योतिषी आए थे, वो भी कहते कि 4 दिन की तकलीफ अभी खोना गए, वो सब देखा मेरे जन्म तारीख ले ली, फिर वो उनकी लड़की को जानते तो वहाँ फोन किया, ये किया वो किया, तो बिना मेरे कहे बता दिए कि 5 तारीख पे हुआ, 4 दिन हॉस्पिटल रहे और पैसा बहुत कर सकते, पैसा चाचा जी दिए लेकिन दिया तो गुरु का 64,000 रुपया तो दे रखा था, वो पेमेंट करना था नहीं ज़्यादा करना, इसलिए कभी बीमार पड़ा करो तो डॉक्टरों को दे दिया, वो पेमेंट दे रहा हूँ सबके लिए। तो देख लीजिए हमारे चेहरे से खून हुआ, यही कर्म का चलता कि जो आपके द्वारा शुभ हुआ, मेरा चेला राष्ट्रपति बनेगा तो मैं जाऊंगा तो वहां मेरा स्वागत होगा, लेकिन मेरे चेला गलती करके जेल में जाएगा तो वहां मेरा कोई स्वागत करने वाला कि भाई ये कैदी का गुरु आया वही राष्ट्रपति भवन पहुंचूंगा, अरे राष्ट्रपति गुरु आया, अरे इतनी लंबी लाइन में जाएंगे लेकिन वही चेला जब जेल में जाएगा और मैं कहूंगा अपने चेले के मैं गुरु हूं तो कोई सलाम, और वो भी 2 मिनट बाद कहते हैं टाइम पूरा हुआ और राष्ट्रपति भवन कारपेट बिछा देंगे रोज या गुलाब का फूल, और कहेंगे स्वामी जी मेरा एड्रेस है, फिर आना तो मैं आपसे मिलूं, जेल में कोई नहीं कहता फिर आके मिलूं, चेला वही है अर्थात सुख में लोग हिस्सेदार बनते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं हम इतने अच्छे बने कि हमारे सुख में लोग हमें याद, और कोशिश से कर कि किसी का जो विजन है, धर्म है, संप्रदाय, उसमें हम अपने परमात्मा को देखें, एक दूसरे को अलग करने की कोशिश न करें, एक दूसरे को विरोधी न बनाए, बल्कि एक दूसरे के पूरक बने। कोई भी आप डॉक्टर हैं तो आपका विजन क्या है, कोई भी मरीज उसको ठीक करना, उसमें थोड़े है कि गुजरात के डॉक्टर गुजरात वालों को ठीक करेगा पंजाब वालों को नहीं ठीक करेगा। सुखेन आया कहता मैं लंकेश का वैद्य, राम कहते सिर्फ आप डॉक्टर हैं वैद्य, ये लक्ष्मण राम का भाई नहीं है मरीज है, आप दोनों के बीच में रिश्ता लाने की कोई जरूरत नहीं है, ना आप लंकेश के भाई है और ना आप लंकेश के वैद्य हैं, ना ये राम का भाई है तुम्हारे, ये देखिए आज पूरी दुनिया मानती है कि भारतीय संस्कृति में क्या है। तो सबसे पहले यह है हम सब एक, आज मैं कलेक्टर हूं कमिश्नर हूं वो तो गौरव के, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं ये सब गौरव के, लेकिन गौरव का मतलब क्या है, हम पहले अपनी इज्जत करें, वेद कहता पहले अपनी इज्जत, जो अपनी इज्जत नहीं कर सकता उसकी इज्जत कोई नहीं करे, आप अपने नजरों में न गिरो, आप परमात्मा के स्वरूप हो, मनोविज्ञान कहता है पहाड़ पर से गिर करके उठ सकते हो लेकिन स्वयं अपनी नजरों में गिर जाओगे तो तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं, अपनी नजरों में क्यों गिर, क्यों मेरे सरकार या विचार कर, राम हमेशा जोड़ने का काम किया, सबसे जबरदस्त जोड़ की बात बताएं, लक्ष्मण को भेजा कि जाओ लंकेश से सीख कर आओ जोड़ने के लिए, या सुनिए तो किस तरह से जुड़े हैं, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया, कोई समस्या नहीं लगा, लेकिन लक्ष्मण से कहते जाकर लंकेश से सीखो। गए लंकेश के, लंकेश पहले क्या बोलता, इतना सुंदर विचार वाला भाई कभी नहीं। सारी जिंदगी मैंने दुश्मन किया, दुश्मन रहा, लेकिन फिर भी मेरे पास लिखे, अब जब हम अपने भाई या किसी को अपने दुश्मन के पास भेजेंगे तो मनोविज्ञान कहता है उसकी जो अंदर हमारे लिए नफरत है कम हो जाती है। एक रामायण की और बात कर ले, फिर चल ये जो बाली शब्द बनाए या विचार, अंगद के पिता का नाम बाली, बाली जो है राम का विरोधी और राम के द्वारा मारा गया। मैं बैरी सुग्रु प्यारा कारण को नाथ मैं मारा, अनुज बधु भगनी सुत मारी, सुन सट आय कन्या समचारी, इन्हें खुद से गुरु के जो ही ताई बने से पा। बाली ने अपने खुद अंगद को कहा, बेटा तू राम की शरण में जा। पिताजी आप राम के जीवन भर दुश्मन रहे और मुझे आप भेज रहे हैं अपने दुश्मन के पास। बाली ने क्या कहा, अगर राम की शरण में होता मौत हो आती लेकिन नरक में नहीं जाता। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सत आय कन्या समझा, मुझे क्यों मारा, मुझे कोई संस्कार देने वाला राम जैसा कोई नहीं मिला, थोड़ा इशारा करूं। अनुज बधु छोटे भाई की पत्नी बहन के समान होती है और मैंने उससे पति का रिश्ता जोड़ा कि बहुत पाप किया इसलिए मेरा, लेकिन अगर राम जैसा कोई सलाहकार होता तो छोटे भाई की पत्नी बहन होती है, बहन के साथ मैं पति अभिशाप। अनुज मधु भरने से मैं तुझे अंगद इसलिए भेज रहा हूं तो उनके पास रहेगा तो तेरे मन में अधर्म की बात गलत बात कभी नहीं आएगी, क्योंकि जो जिसके पास रहता है उसका संस्कार उसको इसलिए भेज रहा और कौन समर्पण के भाव से रहता। और कभी उन्होंने आपको याद किया तो अरे कहा बेटा ये संस्कृति है, तुम उनके पास रहेगा तो मैं जब उनको प्रणाम करेगा जा तेरा कुल कर जाए तो तेरे बदौलत मैं नरक से स्वर्ग में चला जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा तू जा। इसे हमारे यहाँ कहावत है, कर्म से पिता भले नरक में जाए लेकिन पुत्र अपने कर्म से पिता को नरक में स्वर्ग में ला सकता है और स्वर्ग से नरक में भी, दोनों है। अच्छा काम करोगे तो हमारा पिता नरक से और गलत करोगे तो स्वर्ग से नरक, आज तब से जाओ। इसीलिए बाली, बाली पर वाली बना, जिसका उपयोग गुजरात ज्यादा करता हूँ। वाली क्या मतलब, अगर आपका पड़ोसी या कोई दुश्मन है लेकिन अगर लायकात है चैतवान है तो अपने पुत्र को अपने मित्र शराबी के पास में भेज करके जो लायक है भले दुश्मन है उसके पास भेजना चाहिए। इसलिए वाली भले आपका वो दुश्मन लेकिन चैतवान तो है और आपका दोस्त आप शराब पीते हो तो वो भी पीता हो उसके पास भेज के क्या कहूँ। तो जब रावण कहता धन्य है तुम्हारे भाई, इतना सुंदर विचार, तो अब देख लिया जो थोड़ा सा था वो निकल। मैं अपने जीवन की कई घटनाएं लेकिन ये घटना बताऊ, दोनों भाई जबरदस्त किसी ने कुछ धोबी बन के गड़बड़ किया, लड़की की शादी की बात आई, मैंने कहा तुम छोटे हो मेरे से जो बड़े भाई का आमंत्रण का तो अपमान करेगा बैठने, मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ मेरा अपमान होगा तुम्हारा नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ है कि विभीषण ने कहा है, यह हनुमान का अपमान नहीं है, यह राम का है और राम इसका बदला किस तरह लेंगे आपको मैं बता दूं। इसलिए आप जो ये पूंछ में आग लगाने की बात कर रहे हो, ये राम का अपमान हो रहा है, इसका नहीं, ये तो समाचार। इसलिए मैंने कहा मैं भेज रहा हूँ, अगर वो अपमान करता है तो मेरा होगा, तुम्हारा नहीं, तुम जाओ, मैं आपसे भेज, मैं जब भेज रहा हूँ जाओ। गए तो प्यार किया, ये किया, दोनों भाई मिले, सब पता चला कि पड़ोसी लोग धोबी बन के दो भाइयों को कैसे रहना, आपको कुछ बोलेंगे, उनको कुछ बोलेंगे, खड़ा कुछ बोलेंगे, अरे भाई भाई क्यों, या विचार कर, नहीं तो मन में जो था सब निकल गया, फिर आए सब कुछ हुआ, मैं भी था वहां शादी में गया सब कुछ, और नहीं वही नफरत बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, बुरा मान, अगर नफरत बढ़ जाएगी, आपकी लड़की की शादी की बात तो ठीक हुई, लेकिन कभी भाई के रिश्ते में कोई रिश्ते की बात आएगी तो उससे पूछेंगे तो कहते हैं कि अरे कहाँ पागल बने वहां जाने के, कि पड़ोसी ही सुख देगा पड़ोसी ही, इसलिए कहते हमारे यहाँ की पड़ोसी को भी अपने सुख में हिस्सेदार कर, उसके दुख में उसकी मदद कर, तो वो भी आपकी मदद करेगा, या विचार कर। तो प्यारे बच्चों अपनी एक बात बताते हुए, हमारे यहाँ जो अन्नपूर्णा की बात की गई, माता की बात की गई, सन के स्वरूप में आने पर बहुत ध्यान, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों माता पिता गुरु और अन्न से कभी नहीं रूठना, चाहे कुछ हो, जो लोग रूठे हैं कभी आप जस लोग हॉस्पिटल जाइए, 4-4 करोड़ का फ्लैट है लेकिन किसी मजदूर का हिस्सा मारा या कुछ भाई का मारा, तो आज लोग उनके लिए फ्लैट में आते हैं और मेहमान भजिया पूरी बर्फी खाता है, उनके लिए नारियल का पानी लाता है, वो भी डॉक्टर कहता है इतना पीना ज्यादा नहीं, 4 करोड़ का फ्लैट लेकिन पानी भी पीने के लिए कैंसर हुआ। कई लोग मुझे ऐसे मिले, मैंने कहा सुदामा की तरह किसका किसका चबा गए खा गए, चना किसका चना, पहले वो बताओ भाई का खाया कि पड़ोसी खाया किसका खाया, ये आपको बताओ। और एक जो है अक्सर मेरे सामने बात आती है, वो बताना मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि आपको हाथ जोड़ के बताऊंगा, मेरे शिष्य हो मेरे परिवार, आप मंदिर में जाओ मस्जिद में जाओ गुरुद्वारे में जाओ कहीं भी जाओ, मैं आपसे पूछता हूँ खोले आप पूछता हूँ, टेप करना और टेप करना, क्योंकि मैं अथॉरिटी, लंबे समय तक चाहे कोई मस्जिद का ट्रस्टी हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे गुरुद्वारे का हो, अगर वहां से कुछ खाया है तो उसके लड़के या तो पागल हैं या तो अंधे हैं या तो लंगड़े, आप देखो ये सब होता है। इसलिए एक थोड़ी सी बात आपसे करूं कि आप मंदिर में जाइए कहीं भी जाइए, सभी के लिए नहीं लेकिन 80% मैंने देखा, 20% ठीक है सर, लेकिन काफी ट्रस्टीज के मैंने अपने मंदिरों में देखा, ट्रस्टीज के मैं नाम नहीं लेता लेकिन मैंने सब देखा, बड़े बड़े मंदिरों में जो ट्रस्टी हैं अगर वहां का कोई हिस्सा खाया है किसी संस्था का खाया है तो या तो उनके यहाँ संतान नहीं है और है तो ना लगे, आप पता लगा मेरी बात, 80% सही, हो सके तो मंदिर में देना चाहिए लेकिन अब क्यों कैसे होता मैंने देखा बताऊंगा, हाथ जोड़ के कम, हमारी बात तो छोड़िए लेकिन आपकी भैंस की दूध नहीं देती ना, तो कहते कि हे शिव भोलेनाथ मेरी भैंस दूध देगी तो पहले दूध का पैसा तुम्हें चढ़ाऊंगा, तो वो दूध के पैसे जो रोटी खाओगे तो क्या होगा, वो तो दूध निमित्त बना, तो एक थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, जो संस्थाएं हैं स्कूल है कि हॉस्पिटल है कि क्या है। अब जेल तक की बात बता दूं, मेरे कुछ परिचित हैं नाम नहीं लेते, लड़का पागल हो गया, जेलर का लड़का पागल हो गया, मेरे पास चीज आए मेरे पास, मैंने कहा कैदियों के नाम जो आता तो उसमें कितना खाए बच्चों को उसमें ना। अब आप कहेंगे फिर स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है, अरे सुनने लायक बात और बड़े प्यार से कहता हूं, जरूरत पर चांदाल के घर से कुत्ते के मांस चुरा कर दूसरा, हमारे संपर्क में बहुत से लोग कई बार एडमिशन के लिए मेडिकल के लिए डोनेशन देना पड़ता, मन का जितना जरूरत है कर लो, कुछ नहीं, मैं गुरु हूं, किसे कहता है गुरु रास्ता बताएगा। और इसलिए एक दूसरा रास्ता बताता, ये हमारे वेद में सम्मत है, इसलिए मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। अगर आपको लगे कि शायद थोड़ा सा रास्ता गलत, तो हमारे यहां कहा गया है, बड़े प्यार से कहता हूं, शायद उसमें मैं भी आ जाऊंगा कि कमाई का 10% अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में गुरु को दे दीजिए। गुरु अग्नि होता है, खा के पचा के भस्म करते हैं, लेकिन 10% घर वालों को भूखा रख के नहीं। ये खुलेआम कह रहा हूं हमारे यहां दशांश। अगर कभी ऐसा लगे तो कहते हैं कि गुरु है, समर्थ गुरु है, पीर है, पैगंबर है, मौलवी है, सब की बात करते हैं। ये अग्नि स्वरूप है और अग्नि क्या करती है कि बेकार की चीजों को, तो किसी से मत कहना, लेकिन कभी लड़के के लिए डोनेशन लेने में आपको लेना पड़े तो उसका 10% अपने गुरु को दे दो। कुछ भी होने वाला, लड़का आपका डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नहीं तो एक क्लास में 3-3 साल लगाएगा और वो पैसा सब जाता रहे। एक बात बोल, क्योंकि बताना तो सब कुछ बताना, नहीं तो आपको बड़े मुश्किल में हो जाओ। हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं पर बंधन नहीं किया, कितनी संस्थाओं के देखा है प्रमुख है, उनके संतान ही नहीं। तो मेरे से पूछते हैं तो मैंने कहा कहीं अच्छे काम में, जो पैसा अच्छे काम में खर्च करो, नहीं तो जिस संस्था में उसमें तो दान दे, सुबह शाम संस्था की रोटी भी खाएंगे और संस्था के पैसे से मकान भी बना लेंगे और बाद में रहने वाला कोई नहीं। तो हमारी संस्कृति हर तरह से काम, जब कृष्ण ने कर्ण को बताया, अर्जुन को कर्ण के लिए बताया, तो अर्जुन में भी शंका है, ये तो का धर्म है आमने सामने होना, ये तो पहिया निकालना। कृष्ण कहते हैं धर्म गुरु जानता, तुम नहीं जानते, इस समय तुम हूं मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, तुम मेरे न मित्र हो न दोस्त हो, अब मेरे शिष्य। अब गुरु का काम है शिष्य को बचाना, तो मैंने अपने धर्म को समझा, मैं भी आप सबका गुरु हूं, आपके जीवन के विकास में बड़े प्यार से कहता हूं, मैं किसको पचाया हूं समझे हूं और सफल भी हुआ, आपके जीवन के विकास में कोई भी नीति कोई भी नियम अगर दीवार बनती है तो उस दीवार को मैं तोड़ूंगा, लेकिन आपको दीवार को उस पार ले जाऊंगा, सफलता से ले, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण जब अर्जुन को बता रहे हैं तो मेरा प्रिय है इसलिए कह रहा हूं, तुझे बचाना मेरा धर्म है, तुझे बचाऊंगा तो समाज और नीति नियम बचेंगे, तुम्हें नहीं बचा पाया तो न नीति बचेगी न। तो हमें देखना पड़ता है कि मैं महात्मा को बचा रहा हूं कि राक्षस को बचा रहा हूं, वो थोड़ा विवेक लाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अपने विषय बहुत कम बता, लेकिन मैंने बचाया बहुत लोगों को बचाया, सविल दास भी गवाह है और भी हैं कितने, जहां जरूरत पड़ी देखा है, ठीक है बचाया हर तरह से। और एक अर्थ गुरु का धर्म करता रहा, तो इस तरह से आज जो मुझे विषय दिया आसिफ ने, हम एक दूसरे के पूरक बने, हमारे सुख में सब हिस्सेदार बने, हम किसी के लिए समस्या न बने, किसी के विचार को, धर्म को, संप्रदाय को, उसका जो विजन है उसमें डिवीजन हुआ। आज बहुत डिवीजन हो गया, आपको सत्य वही है लेकिन आपसे क्या बता। वेदांत एक बड़ी सुंदर बात कहता है, इस संप्रदाय को, विजन को एक बहुत सुंदर रूप दे रहा है। यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं, कोई सफेद कपड़े में, कोई लाल कपड़े में, कोई पीले कपड़े में, कोई काले कपड़े में, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, सब है। प्रवचन के बाद में चला गया थोड़ी दूर, यहां एक उदाहरण देता, वहां कुर्सी बैठा, कुछ लोग आए संजोग से, हजवा से या बदार से, दस पांच साधु भी आए हैं वहां, उनको लेके बैठा हूं, तो एक आपको समझाने का स्वरूप बता रहा, दस पांच साधुओं को लेकर के बाहर बैठा हूं, वहां कोई नहीं है, आठ दस लोग बाहर से आए, आपके भी कपड़े, किसी का पीला है, किसी का लाल है, किसी का सफेद है, आने वाले भी किसी का लाल है, पीला है, सफेद है, काला है, तो आने वाला सफेद कपड़े वाला एक पीले कपड़े वाले से पूछता है कि मनीषानंद किधर, दस साधु बैठा हूं, तो उसने उंगली दिखाया, लेकिन वो पीला कपड़ा वाला कहे कि मनीषानंद तो गेरुए हैं, वो जो गेरुआ पहना है वो बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। देखिए आने वाला चाहे किसी कलर में है, बैठने वाले किसी कलर में है, लेकिन उंगली का जो इशारा है उसमें कोई कलर नहीं। इसी तरह से कहता हूं, जितने महापुरुष हुए, चाहे बुद्ध हुए कि महावीर हुए कि पीर हुए, पैगंबर हुए कि शंकराचार्य हुए, माधवाचार्य, निर्मलाचार्य के, कबीर के, तुलसी के, मीरा, इस सब का जो इशारा है उसमें कोई जाति माति कलर नहीं, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया, नहीं पीला वाला ही बताएगा, लाल वाला ही बताएगा, सफेद वाला, और पीला कपड़ा पहनो तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं, नहीं, नहीं। सफेद रंग वाला कहता तुम सफेद पहनो, पीला कपड़ा उतारो तो बताओ, बस यही संप्रदाय बन गई, झंझट बन गई, और एक दूसरे के विजन के डिविजन करके मारा सत्यनाथ, मारो सत्यनाथ। सत्य तो एक है, आप किसी कपड़े में गौरव की बात है, किसी संप्रदाय में गौरव की बात है, किसी ये गौरव की बात है, संकीर्णता की बात नहीं है। तो मेरे प्रिय आत्मन, सत्य एक है, दो नहीं हो सकता, उसकी अनुभूति है। कितना भी समाचार इकट्ठा करोगे, कुछ भी करो, लेकिन जब तक अनुभूति नहीं होगी, शून्य नहीं बनोगे, और शून्य से बनने के बाद ही सृजन होगा। मैं शून्य बना, उस शक्ति को राम के रूप में प्रकट किया, आप शून्य बने, किसके रूप में किया, कोई और शून्य बना, शिव के रूप में किया, कोई देवी के रूप में, कोई महावीर के रूप में, कोई बुद्ध के रूप में, कोई पैगंबर के रूप में, शक्तियां वही है, मिट्टी वही है, कोई इसमें गणपति बनाया, कोई हनुमान बनाया, कोई शिव बनाया, तत्व वही है, सत्य वही है। इसलिए आज के विषय के संदर्भ में कहूंगा, जब सत्य की अनुभूति हो जाएगी आप जिस जाति में उसे छोड़ना नहीं, आपके जो रिस्पांसिबिलिटी उत्तरदायित्व तो नहीं छोड़ना है, अपनी कुर्सी पर अपने दायित्व पर अपने उत्तरदायित्व पर आना है, लेकिन अपनी तरफ से किसी के लिए बुरा भला सोचना, नफरत नहीं करनी, जरूरत पड़ेगी तो हम लंकेश के पास भी जाएंगे अच्छी बात सीखने के लिए, हर व्यक्ति में कोई न कोई अच्छी बात तो होती है, केवल एक बात के लिए टोटल इनकार कर देना वो कोई ज्ञान नहीं है। तो आज जो विषय दिया गया शेयरिंग एंड डिवीजन, मैं आपसे यही कहूँगा सबके अच्छाई में हम हिस्सेदार बने, उसका गुणाकार करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें, हमारे सुख में ही लोग हमारे हिस्सेदार बनेंगे। विजन मतलब विचार, ये विचार में सब कुछ आए, संप्रदाय भी आएगी जाति पाति आए, ये विजन को डिवीजन में उसी में अपना स्वरूप देखें, अपना देखें, आप अपनी जगह अपनी स्थिरता में रहें, अपने धर्म का पालन करें, अपने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे का मान सम्मान करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, और कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे प्यारे बच्चों माता पिता वडील और अन्न का कभी नहीं अपमान, बस ये आपको बताना चाहूँगा, नहीं तो मैंने देखा बड़ा मुश्किल है, लोग थाली उठा के फेंकते, तो आप किसका अन्न का, या विचार तो कीजिए, वही बात दोहरा करके मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी आंखों में पानी आज भी आ जाता कि पिता गले लगा के कहते हैं कि बेटा किसके लिए जिंदा रख, जंगल में उस समय की व्यवस्था थी, मुझे पेशाब पी के रहना पड़ा, किसके लिए पिया, आज तक वो बात मेरे दिमाग में आती है, बताता हूँ कभी कभी कब, लेकिन आज तक मैं चाहे कोई महात्मा हो चाहे कोई वडील हो आप हैं, मैं तो सबका हाथ अपने सिर पर रखवा था, आशीर्वाद है, मेरा पिता पेशाब पी के रहा, पढ़ाई लिखाई अच्छी किया, पिता माता से पूछ कर ही संन्यास लिया है, इतनी और में जो लोग हरिद्वार आए थे तो जब मैं साधु बना था तब के लोग थे वहाँ मिले थे, तो वो सब मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं संन्यास भी धर्म के रूप में लिया है, भाग करके पलायनवादी नहीं बना, इसलिए आप को संन्यासी नहीं बनाना चाहता, लेकिन जहाँ वहीं संन्यासी बनाना चाहता, कैसे सन्यासी, हमें कहा जो मिले खा लो, तो मेरे प्यारे जो पति लाए उसे स्वीकार कर लो, और बेटियों से कहूँगा कि मेरे बेटे जो पत्नी बनाए उसे खा लो, सन्यासी हो, तेरे को नमक नहीं डालना सन्यासी क्या मतलब, रास्ते चलते पत्थर मिले तो चोट लगती है लेकिन उसको रख देता है कि दूसरे को न लगे, तो जिससे आप चोट खाते हैं उसको छोड़ कर ना जाइए, उसको बगल में कर दीजिए कि मैं तो बच्चों दूसरा भी, ये सन्यासी का, सन्यासी जब भोजन कर रहा है कोई भी आ जाता है तुम भी आ जाओ खा लो, तो जो कुछ है रुका चुका उसको खिला दो, हमारे सन्यासियों के नियम है कि चाहे कुछ हम हिंदू हैं सन्यासी हैं तो गाय का मान करो, जो लोग नहीं करते उनकी बात नहीं, गाय का मान करो, कुत्ते का मान करो, सब का मान करो, अरे ध्यान से श्राद्ध में जब आप कागले को खिलाते हो तो फिर दूसरों की तो बातें, कहते स्वामी जी मेरा पड़ोसी कागला है तो भाई श्राद्ध में तो खिला देना, आगे पीछे खिला देना, एक सुंदर बात हंसी की, बड़े प्यार से कह रहा हूँ, थोड़ा हंसेंगे थोड़ा समझेंगे, पड़ोसी को बुला लाए कोई, कहता गाय का शुद्ध दूध है आपको पीना पड़े, कहा बेटा गाय आए तो 6 महीने हो गए लेकिन आज ही दूध क्यों पिलाता है, तो पड़ोसी कहता है भाई साहब आज नाग पंचमी है इसलिए दूध पिला, मैं नाग कहा नाग पंचमी इसलिए पिला रहा इस धर्म में नाग को दूध पिलाते हो तो माता पिता पड़ोसी को दूध पिलाने में क्या है, लेकिन नाग समझ के पिलाते हो वो गलत है, सोचो धर्म की बात क्या थी और लोग कहां से कहां उठा ले, तो हमारे प्यारे आसिफ भाई, डॉक्टर सैनी साहब हैं, पटेल साहब आप हैं,